उसका नाम क्या है, ये चार चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है, किस जगह पर रहता है, उसका स्वरूप क्या है और उसकी लीला क्या है। इसी के बारे में ही सारे सकल जगत के जितने ग्रंथ हैं वो खामोश हैं। वेदों में नेति नेति करके कहा, रामायण में राम भगवान ने कहा हमने बता सकते जिसके प्रमाण आपको दिए, अब वो सारी बातें दोहराई नहीं जाएंगी, केवल दो मिनट पिछला प्रसंग दोहरा रहा हूँ ताकि पकड़ में हम प्रसंग को ले लें। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह ताला खुद आएगा तब ही इन बातों की खबर होगी, मैं नहीं बता सकता। ईसा मसीह ने भी कहा कि 16.5 सदी जब बीत जाएगी तब वो खुदा दुनिया में आएगा और आकर के दुनिया को अपना ज्ञान, जिस ज्ञान के बिना आज दुनिया अधूरी है, वो ज्ञान आकर के स्वयं पार ब्रह्म अक्षातीत कहेंगे, जिसको हम बुद्ध निष्कलम का अवतार कहते हैं हिंदुओं के ग्रंथों में। मुसलमान लोग उसी को ही अपनी भाषा में आखिरुज़्ज़मां इमाम मेहदी कहते हैं और गुरु ग्रंथ साहब में पार पुरख करके कहते हैं और ईसाइयों के ग्रंथों में सुप्रीम पुरस्कार कहते हैं। अब वो समय कलयुग का लिखा हुआ है ग्रंथों में। अब हम लोग जब पंतों से जाकर के पूछते हैं तो क्या लिखा है कि कलयुग का जब आखिरी चरण आएगा, यानी आखिरी समय होगा, उस समय बुद्ध निष्कलम का तार आएंगे। तो इसलिए पंडित लोग विद्वान लोग क्या समझ जा रहे यार, अभी कहां महाप्रलय आने वाली है, अभी तो बड़ी साल पड़ी है, क्योंकि कलयुग की आयु शास्त्रों में 432,000 साल लिखी है और कलयुग को शुरू हुए केवल अभी 5,000 साल हुए, तो कितने साल बाकी होने चाहिए। लेकिन इस चीज को कोई नहीं पकड़ रहा है। ये तो ठीक है कि उम्र 432,000 लिखी है, लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है सतयुग की उम्र कम नहीं होती, त्रेता युग की उम्र कभी कम नहीं होती, जितने लिखी है मनु जी ने उतने ही होकर के तब दूसरा युग आता है। द्वापर युग की भी आयु कम नहीं होती, लेकिन कलयुग की आयु कम होती है। कैसे घट जाती है कि जैसे जैसे दुनिया में पाप होते चले जाएंगे उतनी उतनी ही आयु कलयुग की कम होती जाएगी। और जिस समय एक भाई अपनी बहन के साथ या एक पिता अपनी कन्या के साथ व्यभिचार करेगा, उस दिन उस समय कलयुग की आधी उम्र उसी समय कट जाए। अब सोच करके यदि हम देखें तो ये समय भी जो बीत रहा है कलयुग का, ये फालतू वाला बीत रहा है, उम्र खत्म हो चुकी है। कलयुग के हुए सिर्फ 5 साल है, लेकिन 5 सालों के अंदर इतने जुल्म अत्याचार व्यभिचार जो कुछ हो रहा है इस सृष्टि में, उस हिसाब से आयु खत्म हो गई। तो अब लिखा था कि आखिरी चरण में वो बुद्ध निष्कलन का अवतार में आना है, तो अब वो बात भविष्य पुराण की जो कल आपको शिवजी महाराज की अमर कथा सुनाई, उसमें भविष्य की बातें कही कि हे उमा तू चिंता मत कर, जिस पार ब्रह्म का तू ज्ञान सुनना चाहती थी पर तू सुन नहीं सकी, वो आ जाएंगे, अब आने वाले हैं, हमारी ही इस दुनिया में उतरने वाले हैं, और तू चिंता मत कर, अब तपस्या करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं आने वाले हैं और मनुष्य तन में धारण, मनुष्य तन आकर के धारण करेंगे। तब उमा ने प्रश्न किया, प्रभु तो आने वाले हैं अगर अपनी दुनिया में, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, किस जगह आएंगे? उन्होंने कहा भारतवर्ष के अंदर आए, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसी भूमि है जिसको देव भूमि सारे शास्त्रों में कहा है, और वो भी इसी भूमि में आकर के उतरेंगे। फिर उन्होंने कहा जी भारतवर्ष भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा तो है नहीं, कोई खास जगह होगी जहां आएंगे, सारे भारतवर्ष में किसी जगह तो आएंगे, हरिद्वार में आएंगे, प्रयागराज आएंगे, मथुरा जी आएंगे, कौन से तीर्थ स्थान पे आएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, वो तीर्थ स्थान जो है वो देवी देवताओं के आगमन के स्थान है, हरिद्वार कोई मामूली जगह नहीं, वहां सारे देवी देवता उतर चुके हैं, शंकर भगवान जी साक्षात उतर चुके हैं, ब्रह्मा जी साक्षात उतर चुके हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी कई बार वहां पर उतर चुके हैं, देवी देवताओं का अक्सर आगमन हो चुका है। तभी इन तीर्थों के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि लोग जाकर के खाली स्नान करते थे नदियों में और पाप दूर हो जाते थे, अब नहीं होते थे, समय लिखा हुआ था कि जब वो परब्रह्म क्षातीत आकर के इन नदियों में अपने चरण रख देंगे तो वो शक्ति इनके अंदर खत्म हो जाए, ये लिखा है शास्त्रों में। अब वो समय आ गया और वो समय के हिसाब से अब सारी बातें जो शंकर भगवान जी ने बताई कि वो पद्मावती केन सत्य मध्य पृष्ठ विराजता, कल बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर किलकला नदी एक है, उसके किनारे के ऊपर एक नई नगरी आकर के वो बसाएंगे, वहां कोई शहर बसा हुआ नहीं होगा और उस शहर का नाम पद्मावती होगा, जिसको हम लोग आज पन्ना जी भी कहते हैं और प्रणामी सुंदरसार पद्मावतीपुरी धाम भी कहते हैं। वो आज जो बसा है, आज से 400 साल पहले जब वो सतयुग था तब उमा ने कहा कि ए प्रभु चलो फिर उस धरती के दर्शन करने चाहिए। शंकर भगवान जी, शिव पुराण में ये लिखा है, शंकर भगवान जी तुरंत जो है उमा को साथ लेकर के उस पद्मावतीपुरी किलकला नदी के किनारे पर आए और आकर के एक झाड़ था, क्योंकि कोई शहर तो बसा सतयुग में थोड़ा था, वो तो प्रमाण उन्होंने दिया था कि कलयुग में आएंगे तब वो आकर के यहाँ नगर बसाएंगे, अपना धाम बनाएंगे, अपना नूरी झंडा गाड़ेंगे और उनके रहने के लिए स्थान होगा। तब सतयुग था, उमा को लेकर के आए और आज भी जो सुंदर साथ सनी श्री पन्ना जी जा चुके हैं, बाहर वाला जो झंडा है वो स्वामी जी ने अपने हाथ से लगाया। वहां आकर के शंकर भगवान जी ने एक झाड़ी थी, झाड़ी को आकर के मत्था टेका और आकर के परिक्रमा करने लगे तो उमा हंस पड़ी, कहने लगी वाकई आप भोले हो, दुनिया आपको जो भोले कहते हैं ना, भोला शंकर वाकई तुम भोले ही हो। अरे बाबा, कोई यहाँ मूर्ति नहीं है, कोई भगवान का मंदिर नहीं है, एक झाड़ सी है, जंगल बियाबान है, कोई पत्थर नहीं, कोई रोड़ा नहीं, कोई कंकर नहीं, कोई किसी भगवान का मंदिर नहीं, आप किसको मत्था टेक रहे हो? तो शंकर भगवान कहते मैं इस जगह पर मत्था टेक रहा हूँ जिस जगह पर मेरा कभी भी मत्था टेका नहीं गया था। इसी धरती के ऊपर पारब्रह्म क्षातीत स्वयं आएंगे, उतरेंगे, एक मनुष्य तन में आके उनके चरण कमल यहाँ पड़ेंगे और वो अपने हाथ से उस ध्वजा को गाड़ेंगे, ये वो पवित्र धरती है। अब ये सारी बातें कब कही गई? सतयुग में। सुनी किसने? सुखदेव मुनि ने। लिखी किसने? व्यास जी ने। अब वो समय जब आ गया, अब हमें कैसे पहचान हो? सवाल तो ये है, आज पढ़ा लिखा युग है, आज वो धर्म का समय नहीं है जी, माता पिता धर्म में जा रहे हैं तो हम भी जा रहे। आगे था कि माता पिता के पीछे संतान चलती थी, माँ बाप जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, आज पढ़ा लिखा युग आ गया। जब तक किसी के मन के संशय मिटते नहीं और उसके अंदर आत्म के साख गवाही नहीं देती कि भाई ये फैक्ट्स है, तब तक कौन किसी को मानता है? यही कारण है कि आज लोग धर्म को छोड़ करके अधर्म के पीछे क्यों जल्दी चले जाते हैं कि वो मैटीरियलिज्म संसार की ऐसी चमत्कारी चीजें टीवी इत्यादि ऐसी हैं हमको प्रत्यक्ष दिख रही है और इस चीज को देखने के लिए आत्म को जागृत करने के लिए वो पराशक्ति का ज्ञान जब तक हमें मिलेगा नहीं, हमें समझ आएगी नहीं, तब तक लाख ग्रंथों में लिखी हुई बातें हम आज ग्रंथों का भी कदर आदर निरादर करना जो है इसीलिए जो है भूल गए। अब वो समय जब आया, एक मनुष्य तन के अंदर वो शक्ति आकर के विराजमान कैसे होती और वो कैसे आकर के हमें पहचान देती है? तो अब स्वामी जी एक मनुष्य तन में प्रकट हुए, जो समय लिखा था, जो प्रोग्राम पहले से ही सूचना मिल चुकी है कि 28वें कलयुग में वो एक मानव तन में आएंगे, वो आए। अब आकर के वो अपने ही मुख से कह रहे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, कोई अजान व्यक्ति आ जाए, हम तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आते ही हम में से एक आदमी तो पूछेगा उससे कि भाई साहब आप कौन है, पहला क्वेश्चन यही होगा, आप कौन है, कहां से आए, हमारे लाइफ क्या सेवा है बताइए। ये तीन क्वेश्चन कॉमन प्लेस, कॉमन क्वेश्चन है, कोई नया आदमी अजनबी मिलेगा तो हम लोग हर कोई व्यक्ति ये कहेगा जी आप कौन सा है, कहाँ से आए, मेरे पास आए, बताइए क्या लायक मेरे लायक सेवा है और क्या हुक्म है आपका, तब जाके परिचय होता है। तो इस किताब के अंदर जो कल लिखा कि तीन स्वरूपों की मेरी भीतर, पहला स्वरूप उन्होंने आके अरब में धारण किया, दूसरा तन उन्होंने जो धारण किया उस तन का नाम देवचंद्र है और तीसरे तन का नाम में राज ठाकुर है, शक्ति एक ही पार ब्रह्म अक्षरा तीज की है। अब वो तीसरे तन में आकर के अपनी पहचान कह रही करा रहे हैं कि ऐ मेरी परम धर्म की आत्मा, मैंने तुम्हारे लिए तीन बार तन धारण करके ये ज्ञान पूरा कंप्लीट करके रखा है। अब इस ज्ञान का नाम क्या उन्होंने रखा है? बेशक इलम, कि जिसके अंदर कोई संदेह अब नहीं होगा। चाहे आप इसको गीता से तोलोगे, चाहे आपको भागवत के प्रमाणों से देखोगे, चाहे आप कुरान से समझना चाहोगे, कुरान को साथ रख लेना और मिलान करके देख लेना कि वाकई बातें ठीक हैं। बाइबल में जो ईसा मसीह ने आज से 1700 साल पहले बातें 1900 साल पहले कही थी, वो देखो कि वाकई पूरी है। और उस समय जो शंकर भगवान जी ने उमा को अमर कथा सुनाई थी, वाकई वो परफेक्टली ये ठीक है। तभी तो हमें विश्वास आएगा कि भी एक बात सतयुग में कही गई कि कलयुग में ये बात होगी और एक्चुअली वो हुई है, तो फिर इस ग्रंथ को वाकई सत्य मानना चाहिए या कि नहीं मानना चाहिए। अब वो मनुष्यतम यो समझ लो, हम प्राणनाथ जी से परिचित नहीं, हमारे प्राणनाथ जी कुछ नहीं लगते, हम उनको जानते नहीं है वो कौन है। और हकीकत में अब हम उनको जानना चाहते हैं तो वो अपनी पहचान, हमने उनके ऊपर प्रश्न किया, जी आप कौन है? ये प्रश्न हमारा है स्वामी जी के ऊपर कि स्वामी जी आप कौन है, कहां से आए हैं? हमारे पास ही क्यों आए, हमारे पास जो आप आए हो, क्यों आए हो, कौन हो, कहां से आए हो? तो वो जवाब दे रहे हैं भी आपने मेरे से पूछा है मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप ही कह दूं कि मैं पार ब्रह्म अक्षातीत हूं तो कौन मानेगा? कोई नया आदमी आए और वो आके कह दे जी मैं तो पूर्व में परमात्मा हूं, तो हम लोग आपस में बैठे हैं सोच करके, बोलिए क्या बोलेंगे, पागल है सौरा धक्के दो, हमने आपको प्राणनाथ पार ब्रह्म कहता है। अब वो कह रहे हैं कि मैं पार ब्रह्म हूं लेकिन मेरी पहचान मैं नहीं दूंगा। भविष्य पुराण एक ग्रंथ है जिसको शंकर जी ने कहा, उमा सुन नहीं सकी, सुखा सुना सुना किसने? सुखदेव मुनि ने, और लिखा किसने? व्यास जी ने। तो उन्होंने फिर उस वक्त पूछा, प्रभु अब सतयुग है, आपके तो कलयुग में आएंगे, तो सतयुग कितना लंबा अभी बाकी है? अब शंकर भगवान कहने लगे अभी 17 राजा और राज करेंगे। तब उन्होंने पूछा उनके नाम क्या होंगे, वो नाम भी अभी आपके सामने पड़े जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा जी त्रेता युग कितना लंबा होगा, उन्होंने कहा जब 29 राजा राज पृथ्वी पर कर लेंगे तब द्वापर युग आएगा, और द्वापर युग में जब 19 राजा नाम राज नाम भी पूछती गई और शंकर भगवान जी नाम बताते चले गए कि इस नाम का राजा होगा तब कलयुग होगा, और कलयुग में 20 बादशाह राजा जब राज कर लेंगे तो 20वें का नाम होगा औरंगजेब। जब वो बादशाह दुनिया में राज करेगा उस समय एक अवतार होगा, उस अवतार का नाम होगा बुद्ध निष्कलंक अवतार, और उसके अंदर पार ब्रह्म अक्षातीत की शक्ति होगी। ये चुपाई ये प्रसंग पहले अब शुरू हो रहा है। चारों युगों के राजा जो है शंकर भगवान जी ने उमा को बताए, अब वचन जो है व्यास के, यानी ये वाणी लिखी किसने? स्वामी जी कह रहे हैं ये ग्रंथ जो है भविष्य पुराण ग्रंथ जिसको कहते हैं वो लिखा किसने है? व्यास जी ने लिखा है, सुने सुखदेव मुनि जी ने, ये वचन थे। बस स्वामी जी कहते हैं अगर मेरी पहचान करना चाहते हो हकीकत में कि प्राणनाथ कहते किसको है, तो प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, प्राणनाथ किसी शरीर का नाम नहीं है भाई, ये बात है समझनी। राम जो है वो एक शरीर का नाम है, कबीर एक शरीर का नाम है, दादू एक शरीर का नाम है, और भले वो अवतार किसी के भी, उनका जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ और जन्म के नाम से ही राम को राम भगवान पुकारा गया। कबीर का जन्म हुआ इसलिए कबीर की जन्म के जन्म कबीर का जन्म मनाया जाता है, गुरु नानक देव जी का जन्म डे मनाया जाता है, और राम नवमी के दिन राम का जन्म दिन मनाया जाता है। प्राणनाथ का जन्म नहीं हुआ, जैसे इलाहाबाद में कवि एक जवाहरलाल नाम का नेहरू पैदा हुआ था। क्या भारत के अंदर किसी के पास प्रमाण है कि मोतीलाल नेहरू ने उस दिन इस चीज का इजहार किया हो, अनाउंसमेंट कर दिया हो कि लो भाई भारतवासियों चिंता मत करो, मेरे घर प्राइम मिनिस्टर पैदा हो गया। प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू पैदा हुआ। समय लग रही होगी, प्राइम मिनिस्टर एक शक्ति, एक सरकार के पद का नाम है। जब तक वो शक्ति के किसी के अंदर प्रवेश नहीं करती या वो शक्ति वाले पद पर विराजमान नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति व्यक्ति बना रहता। और जिस दिन वो पद पर बैठ जाता है, वो शक्ति उसको मिल जाती है, उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। इसी तरह से ये जो प्राणनाथ नाम की शक्ति आपके सामने कही जा रही है, ये प्राणनाथ एक व्यक्ति के जन्म का नाम नहीं है, इसके जन्म का नाम मेराई ठाकुर है। इस तन का नाम, जिस तन के अंदर प्राणनाथ की शक्ति आकर के विराजमान हुई है, और प्राणनाथ कहते किसको है, यही चीज वो कह रहे हैं कि उमा ने पूछा कि फिर वो आएंगे कैसे, किस तन में आएंगे और कैसे वो लीला करेंगे, ये सारा परिचय हमको बताइए। और शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि पहले सतयुग के अंदर 17 राजा जब राज कर लेंगे, अब उनके नाम सुनते चलिए, और फिर बीती हुई बातें को जो भविष्य पुराण की या सतयुग के ग्रंथ है उनके साथ मिलान कर लेंगे। कौन? जिसके दिल में शक हो वो भाई जाके ग्रंथों में देख ले। पहला राजा उस वक्त शंकर भगवान जी ने कहा कि अब इसके बाद पहला राजा कृत नाम का होगा, उसने भी अपना राज किया। ये 17 राजाओं के नाम है, इसमें खास समझाने वाली जो है बात नहीं है, कोई जब समझाने वाली बात आएगी हम अपने आप समझाना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद उसका लड़का जो था कृतदत्त नाम का राजा हुआ, फिर अंत नाम का राजा हुआ, फिर मचकुंदभा नाम के राजा हुआ। ये 17 राजा जो सतयुग में हुए थे उनके नाम है। फिर भैरवानंद का नाम का राजा हुआ, फिर उसने भी राज किया। फिर आद नाम का राजा हुआ, फिर हरनाकुश को सब जानते हैं, ये सतयुग का हरनाकुश नाम का राजा हुआ। फिर उसकी जगह पर प्रहलाद जो है आकर के राजा हुआ। फिर वली लोचन नाम के राजा हुए। फिर बलभगत नाम का राजा हुआ, उसने भी अपना भुगता यानी राज आकर के पूरा किया। फिर वली लोचन नाम का राजा हुआ, फिर वानासुर नाम का राजा हुआ, फिर कपलाक्ष नाम के राजा हुए, फिर कपल भद्र नाम का राजा हुआ, फिर जरासरी नाम का। स्वामी जी ने ये नाम क्यों लिखे, इसलिए कि यदि किसी भाई के दिल में संदेह हो तो सतयुग से ग्रंथों को उठा करके देखे कि वाकई ये राजाओं ने राज कर लिया है, क्योंकि ये चीज तो पास्ट टेंस हो गई है ना, उस समय भविष्य की बात थी, आज कलयुग के अंदर ये चीजें बीत चुकी, ताकि इस ग्रंथ को प्रमाण लेने के वास्ते कि एक्चुअली ये ग्रंथ जो है सत्य है, या किसी की एक मन ग्रंथ कथा लिख रखी है उसको मान करके हम अपना जीवन क्यों नष्ट करें। तो स्वामी जी कहते हैं ये ग्रंथ शास्त्रों में मिलान करके देखो कि वाकई इन राजाओं ने पृथ्वी पर राज किया है कि नहीं किया। फिर धूम्र ऋषि नाम का राजा हुआ। ये 17 नाम है सतयुग के राजाओं के नाम आपने सुने, अब 29 राजाओं के नाम सुनिए जिन्होंने त्रेता युग में राज किया। पहले ब्रह्मा नाम का राजा हुआ, त्रेता युग शुरू हो गया। फिर मरीच नाम का राजा हुआ, फिर कश्यप नाम का राजा हुए, फिर सूर्य नाम का राजा हुआ, फिर तपशक्त्र नाम का राजा हुआ, फिर अक्षवा नाम के राजा हुए, फिर अर्णभा नाम का राजा हुआ, फिर विश्वामित्र नाम, ये त्रेता युग का विश्वामित्र नाम है, फिर महामंद्र नाम का राजा हुआ, फिर चिमन नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद कौन राजा हुआ, भद्र उद्वन नाम का राजा हुए, फिर त्रिशंख नाम के राजा हुए, फिर हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, फिर उताश नाम का राजा हुआ, फिर मानधाता नाम के राजा हुए, फिर सगर नाम का राजा हुआ, फिर आशामित्र नाम के राजा हुए, फिर भगीरथ नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद दिलीप नाम के राजा हुए। ये सारे रामायण के अंदर आपने जो है सूर्यवंशी नाम के राजा अभी सुने होंगे, ये उनके नाम है। फिर रघुवंश शुरू होता है, फिर अज नाम का राजा हुआ, फिर उसके बाद जो है दशरथ हुआ, फिर राम भगवान बने, फिर राम के दो पुत्र थे, एक लव और कुश। कुश ने जाकर कश्मीर को बसाया और लव ने आकर के भारतवर्ष के ऊपर चक्रवर्ती राज किया। फिर अंतमान नाम के राजा हुए, फिर कैलखी नाम के राजा हुए, फिर बबरुवान नाम के राजा हुए, फिर सुदर्शन नाम का राजा हुआ, फिर अग्निवरण नाम के राजा हुए। ये 29 नाम त्रेता युग के। अब उसके बाद द्वापर युग हो गया। तो द्वापर युग के जो है, अब 19 राजाओं के नाम सुनिए। फिर इंद्र नाम का राजा हुआ, ये त्रेता युग के द्वापर के अंदर है। फिर चंद्रमा नाम का राजा हुआ, फिर पूर्वा नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद अह नाम का राजा हुआ, फिर निर्मोक्ष नाम का राजा हुआ, फिर शांतनु नाम का राजा होते हैं। फिर उसके बाद कौन राजा हुआ, फिर विचित्र नाम के राजा हुए, फिर व्यास जी ने आके राज किया, फिर पांडव वंश शुरू हो जाते हैं, फिर अर्जुन ने आकर के राज किया, फिर अवरुण नाम कुमार का नाम राजा हुआ, फिर नहक्षत्र नाम का राजा हुआ, फिर शांतनु नाम का राजा हुए, फिर बलिवान नाम का राजा हुआ, फिर निर्वाण नाम का राजा होते हैं, फिर वलीचंद नाम का राजा हुआ, फिर राजा परीक्षित ने राज किया, फिर जन्मेजय राजा हुए। अब कलयुग का नाम, कलयुग शुरू हो जाता है। कलयुग में सबसे पहले कौन राजा हुआ, 19 द्वापर युग के राजा नाम सुनिए, 29 आपने त्रेता के सुनिए, और 17 जो है सतयुग के। अब 20 राजा कलयुग में जो अभी अभी हो रहे, बीते हमारी हिस्ट्रियों के अंदर जिनको हम इतिहास बोलते हैं, वो आप तो सबको जानते ही हैं, उनके नाम सुनिए। पहले यदुवंश शुरू होता है, अजय पाल नाम का राजा हुआ, फिर महिपाल नाम का राजा हुआ, फिर गंधर्व सेन नाम के राजा हुए, फिर वीर विक्रमादित्य शुरू हुआ, फिर विक्रमा चक्र जिसका सम्मत चलता है वो शुरू हो गया, फिर राजा भोज कहते ना, कहा राजा भोज, कहा गंगवा तेली, ये राजा भोज इसी कलयुग का है। फिर गौरी पाशा मुसलमानों की बादशाह शुरू होगी भारतवर्ष के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहले राज हुआ। ये सतयुग से शंकर भगवान जी ने उमा को बताया था कि ऐसा ऐसा भारतवर्ष में होगा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बना, फिर नसीरुद्दीन बादशाह बना, फिर लोडा महमूद नाम का तीसरा बादशाह बना, फिर बड़ा महमूद नाम का बादशाह बना, फिर सुरखा नाम का बादशाह बना, फिर उसके बाद तिमरलिंग नाम का बादशाह हुए, फिर उसके बाद बबर हुए, फिर उसके बाद हुमायूं नाम का बादशाह हुआ, फिर अकबर नाम का बादशाह हुआ, फिर सलीम शाह जो है बादशाह बना, फिर उसके बाद शाहजहां आ गए, ऊपर औरंग, ये 20वां बादशाह। एक कलयुग के काम। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि सुंदर साहब जी, अगर किसी को किसी बात की संदेह हो तो अब उठाइए अपने ग्रंथों को, सतयुग से लेकर के जब से शिव जी महाराज ने अमर कथा सुनाई, और इन जो राजा मैंने कह लिए देखो कि वाकई ये बात ठीक होगी, और 20वां ही बादशाह जो है औरंगजेब हुआ है, तो उस भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ था कि जब औरंगजेब बादशाह होगा दुनिया के अंदर, भारतवर्ष में आकर के राज करेगा, तो क्या होगा, एक कलयुग के काम। कलयुग में ये काम होनी है, आगे अवतार होगा औरंगजेब का, जब राज होगा तो उस समय जो है एक अवतार होगा, उस अवतार का नाम क्या होना है, बुद्ध करण के अवतार। ये है ग्रंथों में लिखा हुआ। स्वामी जी कहते हैं जिसको संशय हो जिस ग्रंथ में हो जाके पढ़ लीजिए कि बुद्ध निष्करण का अवतार का जो है आगमन कलयुग में होना। आज भी लोग कह रहे हैं कलगी अवतार आएगा, कलगी अवतार आएगा, कलगी अवतार आएगा, बुद्ध निष्कलन, कोई एक ही चीज है, कोई बुद्ध निष्कलन का अवतार कहता है, कोई कलगी अवतार कहता है, आएगा नहीं, आ गया, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ। लेकिन लेकिन लोग ये तो पढ़ लेते हैं जी पेपर में आएगा आएगा आएगा, भाई आएगा कब, वो डेट तो पढ़ो, वो समय तो पढ़ो। उन लिखा है कि जब औरंगजेब बादशाह आएगा उस समय वो कलयुग में जो है कलयुग का ये काम होगा कि उस समय बुद्ध निष्कलन का अवतार दुनिया में जाहिर होंगे। अब सुनने वाली बात है कि जितने भी राम भगवान आए, लक्ष्मण और हनुमान और बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर अवतार, उनको मानने वाले जितने भी फॉलोअर्स हुए उन्होंने उनको भगवान माना और उन भगवानों ने उनको अपना भगत और शिष्य माना। ये बात है श्री प्रेमानंद जी की समझने की। उन्होंने अपने मानने वालों को शिष्य नहीं कहा और खुद भगत नहीं कहा या खुद भगवान नहीं कहा। श्री महामती कहे साथ जी कॉमरेड्स। और ये चीज बाइबल में लिखी, यही बात ईसा मसीह ने कही थी अपने साथियों को। उन्होंने पूछा जी जब वो एक मनुष्य जन्म में आएंगे और आकर के वो ज्ञान सुनाएंगे तो दुनिया में जो ज्ञान सुनाता है रास्ता दिखाता है उसको तो लोग गुरु मानते हैं भगवान मानते हैं उनकी पूजा करते हैं। कहते नो 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 नो, उसकी ये पहचान होगी कि वो आकर के जो उनके साथी आत्माएं उनको मानने वाले होंगे उनको अपना साथी कहेगा। साथी का संबंध किसके साथ हो सकता है? शरीर के साथ गुरु और शिष्य कभी भी एक समान हो नहीं सकते। इतना ऊंचा ज्ञान है, कौन समझेगा इसको? उनकी पहचान क्या होगी कि वो जो मानने वाले जो इस ज्ञान पर विश्वास लेकर के चलेंगे उनको अपना शिष्य नहीं बनाएंगे और उनका गुरु नहीं खुद बनेंगे, उनको अपना कॉमरेड आत्म का साथी कहेंगे। क्योंकि उनका संबंध जो होगा आत्मा से होगा, शरीर से नहीं होगा। ये पहचान है बुद्ध निष्कलंक का अवतार की कि वो जो भी जिस जो लोग इसका ज्ञान सुनेंगे वो सुन करके वो पारब्रह्म आकर के क्या कह रहे हैं? श्री महामती कहे साथ जी। और इसका प्रमाण बाइबल में दिया हुआ है कि गॉड सीक्स कॉमरेड। वो जो पारब्रह्म परमात्मा अल्लाह तेल अक्षातीत दुनिया में एक मनुष्य तन के अंदर आएगा वो आकर के अपने साथियों को क्या कहेगा? कॉमरेड सीक्स कॉमरेड। और उन उसे क्या मांगेगा? मत्थे टिकवाना, भक्तियां करवाना, सेवा करवाना, ये नहीं करेगा। वो उनसे क्या मांगेगा कि लाओ भी मेरा प्रेम लाओ, मेरा इश्क लाओ। अब इस चीज को दुनिया कहां से पकड़ेगी जब तक इस बात का मूल ठिकाना पता ना चले। भाई वो आके हमारे से ये कहेगा लाओ जी मेरा प्रेम लाओ, मेरा इश्क लाओ, मेरी प्रेम की बातें लाओ कहां है? तो ये कौन इस चीजों पर विश्वास कहेगा? उनका प्रमाण ये होगा क्योंकि उनकी आत्माएं जिस परम धाम से आई है उनका रबद बातचीत बायस इस बात पर होगी कि हम दुनिया में जाएंगे तो जरूर ऐ हमारे धनी, पर वहां जाकर के तुम्हारे प्रेम को कभी भी भूलेंगे नहीं भूलेंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि ये बातें तुम परम धाम में कह रही हो, जब तुम जाओगी दुनिया में तो तुम्हें तन कौन सा मिलेगा? दुनिया का माया का तन मिल जाएगा, ये जो हम लेकर के बैठे। अब ये ऐसा मोह के अंदर फंसा हुआ है, लाख यत्न हम कर ले, लाख चर्चा सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, पर बीवी सामने है, बच्चे सामने हैं, पोते सामने हैं, कौन छोड़ सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसी तिलसम की दुनिया होगी। तिलसम शब्द एक उर्दू का है, उसको यदा उर्दू के शब्दकोश में खोल करके देखिए तो क्या लिखा है कि ऐसा जाल माया का रचा हुआ होता है जिसमें देवी देवता तीर्थंकर अवतार भी आकर के उसके अंदर ऐसा नशा होता है उस तिलसम के खेल में कि जैसे शराब पीने के बाद आदमी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और बकता है और चाहे उसके कोट उतार लो, घड़ी उतार लो, पर्स निकाल लो, उसको होश नहीं होती जब नशे में चूर होता है। तो वो माया ऐसी चीज है जो इंसान के जीव को भुला देती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भेजने वाला कौन है, या मरने के बाद मैंने जाना कहां है। इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं माया। तो अब स्वामी जी आकर कहते हैं ओ मेरे वतन के साथियों, चेलो नहीं, मैं तुम्हारा गुरु बनने नहीं आया, तुम मेरे चेले नहीं, क्योंकि मेरा तुम्हारा संबंध दुनिया वाला नहीं है, दुनिया के जितने भी अवतार आए हैं। अब ये बात को अच्छी तरह से समझिए, ये समझने की चीज है। ये प्रणामी धर्म का काका है, ये प्रणामी धर्म की नींव है जो श्री प्रेमानंद जी ने आकर के पहले से शास्त्रों में कहलवाई थी और जिसके प्रमाण ग्रंथों में लिखे। उनकी पहचान ही यही होगी, भले वो मानव तन के अंदर आएंगे, ज्ञान उस अखंड परम धाम का लेकर के आएंगे जो किसी ने आज दिन तक ना सुना होगा ना किसी ने सुनाया होगा। लेकिन ऐसा ज्ञान देने के बाद भी वो जो लोग इस ज्ञान को सुनेंगे उसको अपना चेला बना करके गुरु बना के और संसार की तरह से मठ या गद्दियां बना करके नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे, उनको परम धाम का ज्ञान सुना करके माया से निकालेंगे कि भाई हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, ये रहने का बसेरा नहीं, ये रैन बसेरा है, एक रात काटने के लिए तुम्हें ये मनुष्य तन मिला, एक रात काटनी है, सिर्फ मुसाफिरों की तरह से रहो, दुनिया को देख करके दुनिया के अंदर मत फंसो मेरे साथियों, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, इसलिए तुम क्या हो, मेरी आत्मा के साथी हो। ये श्री महामती कहे साथ जी, ये प्रमाण पहले से लिख रखा, उनकी पहचान यही होगी कि वो आके कहेगा क्या, ऐ मेरे साथी, मेरी आत्मा के साथी, क्योंकि साथी कौन जो कभी बिछड़े नहीं, शरीर हमेशा एक दूसरे से बिछड़ जाने वाला है, इसलिए शरीर का कोई भी साथी यहां पर नहीं बनाए फिर रही है दुनिया, दोस्त भी बना रखे, रिश्तेदार सगे संबंधी हम सब ने बना रखे, लेकिन कोई किसी का नहीं। हाँ, आत्मा का संबंध ऐसा है कि यदि पार ब्रह्म ध्यान के साथ सुनने की बात है, आत्मा का संबंध ऐसा है कि यदि पार ब्रह्म वो परमात्मा प्राणनाथ खुद भी चाहे कि मैं अपनी आत्माओं से नाता तोड़ लूं, तो वो नाता तोड़ने की शक्ति उसके पास भी नहीं। ये उन्होंने वाणी में कही है कि कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कोई हो कोई, कि क्या भला कोई दुनिया में ऐसा काम है जो खुदा भी नहीं कर सकता, उनके तो हुक्म से एक मिनट में सब कुछ होता है। पर कहते नहीं, एक बात है ऐसी बक्का मिले जो हक से भी ना हो, वो कहते एक का ऐसा काम भी है जो मैं भी नहीं कर सकता कि मैं कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकता, जैसे सूरज की किरण कभी सूर्य से जुदा नहीं हो सकती, सागर की लहर कभी सागर से जुदा नहीं हो सकती, आत्मा जिसको कहते हैं वो कभी भी परब्रह्म से जुदा हो नहीं सकती। अब इसका प्रमाण कोई पूछे जी कहां लिखा है, तो गीता खोल लेना, छठे अध्याय के अंदर लिखा है आत्मा च परमात्मा, और ये शब्द हमेशा गीता के सुनाने वाले आप लोगों को और हमें सुनाते रहते, और लिखा सत्य है, आत्मा कभी भी परब्रह्म से जुदा नहीं हो सकती और परब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकता, इस कारण से उनको दुनिया में आना पड़ा, किसी की भक्ति से नहीं, किसी ने उनकी भक्ति की होगी, आत्मा ने कभी नहीं उनको बुलाया, अभी शुरुआत अब हो रही है, अब कह रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए, हमने पूछा जी आप कौन है, तो श्री प्राणनाथ जी उत्तर दे रहे हैं कि ऐ मेरे वतन के साथियों, ऐ मेरी आत्मा के साथियों, ये जो बुद्ध निष्कलंक अवतार का एक नाम मैंने आपको कहा है कि कलयुग में एक बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा, ये तो मैंने प्रमाण दिया है आपको शास्त्र का, ये जो बात कही है ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, शास्त्र कहे यो कर, कि ये तो मैंने आपको परिचय देने के लिए बिफोर माय आगमन टाइम, मेरे आने से पहले के टाइम के जो ग्रंथ हैं, सतयुग इसमें ग्रंथ बने, त्रेता युग में जो है रामायण बनी, द्वापर में जो है भागवत बनी, और ये ग्रंथ जो बने हैं मेरे आने से पहले बने हैं, मैंने नहीं बनाए, उनमें से देख लो कि ये बातें लिखी हैं, अगर ये बातें लिखी हैं तो ये जो बुद्ध निष्कलन का अवतार का आना लिखा है, ये शब्द मेरा नाम मेरे वास्ते लिखा है, मैं वो बुद्ध निष्कलन का अवतार हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा प्रमाण कौन दे रहा है, शास्त्र कहे यूं कर, ये ग्रंथ संसार के पुकार के कह रहे हैं, उनसे आप तसल्ली करो, सेटिस्फेक्शन करो, अपने मन के संशय मिटाओ कि वाकई ये बात ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूं कि मैं आया कहां से हूं और तुम्हारे पास क्यों आया। आगे आप सुनिए क्या कहते हैं, आगे ये बात सुनिए, जरा दोहरा रहा हूं दोबार, क्योंकि हम लोग जब चर्चा अब हो रही है, कोई हमारे से बात दोस्त मिल जाता है, हजारों मिल जाते हैं, ये तो छोटा सा मंदिर है, बड़े मंदिर है हमारे समाज के अंदर, तो लोग पूछते हैं अक्सर श्रावण के महीने में, ये तो हमने मतलब वैसे चर्चा समय के अनुसार रख ली थी, ड्यू महीना जो इसका है श्रावण का ही होता है, क्योंकि उस महीने में उस तन ने तन छोड़ा था, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तन छोड़ा था, और तो उनकी जीवनी हम उनको पहचाने, इसलिए हर प्रणामी मंदिर में श्रावण के महीने में ये चर्चा अवश्य होती है। तो उस समय अक्सर लोग मंदिर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, सवेरे सवेरे क्या गल है तुम्हारे मंदिर, रोज ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे मंदिर में कथा हो रही है। आज दिन तक हम ना समझ पाए ये कथा है क्या, सोचिए बस, समझिए आगे स्वामी जी क्या कथा कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं आगे जो बात है वो मेरी और आप दोनों की बीती हुई बात है, मेरी और आपकी बात है, कथा नहीं है। कथा किसकी होती है, किसी के घर की कोई बात होती है ना, उसको हम कथा कहते हैं। भाई उसके घर की बात है, हमें क्या लेना देना। और अपने घर के मानो लड़के की सगाई करनी है या लड़की की सगाई करनी है या कोई और दुख सुख पड़ता है तो उसको आके कोई पूछे, हमारे से रिश्तेदार को आ जाए ऊपर से और आकर के पूछे, क्यों भाई की गल्ला हो रही है, कोई निजी हमें घर की गली हो रही, हम उसको टाल देते, नहीं बताना चाहते। तो ये हमारे घर की बात है, ये कथा नहीं। क्योंकि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आगे अपनी भी तक। और हम लोग सुन लोगों को क्या बताते हैं, जी हमारे मंदिर में कथा हो रही है, किसकी, प्राणनाथ जी की कथा हो रही, हमारी नहीं, हम इससे बाहर। यही कारण होता है प्रणामी बनने के बाद कि हमारी उम्र सारी बीत जाती है लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि प्राणनाथ कौन है और मैं कौन हूं। प्राणनाथ मेरी आत्मा का धनी है, खांड है, स्वामी है और मैं उसकी पत्नी हूं, अंगना हूं। तो एक मेरे पति और मेरी जो बात है वो कथा होगी क्या, वो मेरी बात है, मेरे घर की बात है, मेरे स्वामी की बात है, मेरी आत्मा की बात है, मैं आया कहां से वो बात है, मैंने मरने के बाद जाना कहां है वो बात है, उसको हम कथा नहीं कहते। हाँ, रामायण को कथा कह सकते, भागवत को कथा कह सकते, इसको कथा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके साथ ठीक है वो भगवान है। हम ये नहीं कह रहे कि राम भगवान नहीं, ध्यान के साथ एक शब्द को सुनी, लेकिन राम को सारा विश्व तो भगवान नहीं मानता, एक कम्युनिटी हिंदू समाज भी सारा नहीं मानता, कुछ लोग हैं जो अवश्य राम को भगवान मानते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड, कि लाखों परमात्मा है, भगवान है जिनको जुदा जुदा समाज मानती है, लेकिन वो परमात्मा जो है जिनको जुदा जुदा समाज मानती है उसको एक परमात्मा नहीं कह सकते, एक उसी को कहा जा सकता है जो सबका एक है। अब जुदा जुदा क्यों हो गए, क्योंकि हमने शरीरों से मान लिया, क्योंकि मुसलमान अपने शरीर से जिसको भगवान मानते हैं मोहम्मद साहब को हिंदू नहीं मानते, अब हिंदुओं में जो राम के भक्त हैं वो कृष्ण को नहीं मानते, जो कृष्ण के भक्त हैं वो शंकर जी को नहीं मानते, जो शंकर के भक्त हैं वो भगवती को नहीं मानते, जो शेरावाली को मानते हैं वो दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए उनके साथ जिनका संबंध है वो अपना जुदा जुदा भगवान ठीक है। ये नहीं हम कह रहे कि वो भगवान नहीं, लेकिन हकीकत में ग्रंथ क्या कहते हैं कि जिसको परमात्मा कहते हैं वो सबका एक। अब इसको किसने आज दिन तक समझा, किसने सोचा, किसने विचारा कि भी जब सारे ग्रंथ तो कहते हैं परमात्मा एक है तो फिर जिसको हमने माना है, अब सवाल यह है सोचने वाली बात क्या है, मनुष्य तन की बात क्या है जिसके लिए मिला है कि जिसको हमने माना है कि ये परमात्मा है, क्या वाक्य प्रमाण गीता में है, क्या वाकई इसका प्रमाण कुरान में है, क्या वाकई इसका प्रमाण बाइबल में है, क्या इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। भाषा भले ग्रंथों की जुदा हो सकती है लेकिन जिसको परमात्मा कहते हैं वो कभी भी जुदा हो नहीं सकता। ये है विचार करने की बात। इसको कहते हैं आगे अपनी भी तक। स्वामी जी कह रहे हैं वो पार ब्रह्मक्षातीत कह रहा है कि ओ मेरी आत्मा, मेरे साथ तुम्हारा जो संबंध है वो दुनिया वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो सब धर्म जितने भी चल रहे हैं वो सब जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा परमात्मा, जुदा जुदा रीति रिवाज, रस्मों रिवाजों में, कर्म कांडों में फंस करके उन्होंने परमात्मा बांट लिए, जुदा जुदा धर्म कर लिए। लेकिन आत्मा जो है वो जुदा जुदा ना हो सकती है, ना थी और ना कभी होगी। आत्मा सबकी सदा एक है। अब ग्रंथों से प्रमाण ले लो, अब दिल से सोच भी लो, बुद्धि से विचार भी कर लो कि वाकई ये बात फैक्ट है। हम शरीर से भले कुछ भी बने बैठे हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं, या हमारा लिंक किसी भी धर्म के साथ अटैच है, लेकिन आत्मा के साथ कोई भी संसार के अंदर सिद्ध करके बताए कि मानव जुदा है, इसको मानव धर्म, हकीकत में मानव धर्म जो है ये है जो श्री प्राणनाथ जी ने आके दिया सारे मानव को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटी जाति में है चाहे बड़ी जाति में है, ये छोटा बड़ा, सेठ अमीर, पंडित विद्वान, राजा, रंग जाति पाति के भेद शरीरों के अंदर है। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, क्योंकि आत्मा जात पात से रहित। इसको आत्मा का ज्ञान कहते हैं। जो स्वामी जी कहते हैं कि आगे जो संबंध है वो मेरा और आपका है। अब आपका हमें कब समझ आवे? जब हम अपनी आत्मा के साथ उसका संबंध जोड़े, और जब तक शरीर के साथ सुनते रहे भाई ये तो बाबू जी ने कही थी इसलिए हमने उनके मंदिर में कथा सुनने के लिए चले गए, प्रणामियों के मंदिर में कथा हो रही है, कुछ नहीं ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे, समय नष्ट करेंगे। सोचिए कि क्या एक दिन हमने शरीर छोड़ना है? हमारी आत्मा ने भी जाना है, और आत्मा कहां जाएगी? जो आत्मा का मालिक है उसके बिना और किसी के पास जा नहीं सकती, और आत्मा सबकी एक, तो उस एक आत्मा का जो परमात्मा है वो कौन है? ये वो बोल रहा है, ये कोई देवी देवता नहीं कह रहा, ये कोई भगवान नहीं कह रहा, ये वो कह रहा जो सबका है, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की सीमा ही नहीं है, जहां धर्मों के बंधन नहीं है, जहां जाति पाति का सवाल नहीं है। और ये चीज देखनी है तो प्रैक्टिकल इस धर्म में आकर के देखिए भी सही। बड़े बड़े